गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत हो गे कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तन भरमत हो गे कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर भया बोरे तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। जहां से तुम आए थे कहते वो सुख सागर है और उस सुख सागर में चलो। सुख सागर किसे कहते हैं, जहां दुख नाम की वस्तु ना हो, सुख के अतिरिक्त कोई और वस्तु ना हो। जैसे समुद्र में बहुत दूर जब समुद्री जहाज चला जाता है तो उसको जल के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता, जहां देखो जल ही जल, जल ही जल, सागर, उसको सागर कहते हैं। तो यहां कहते हैं कि मन तो चल रहे सुख के सागर। अब सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा। जैसे कभी आप एकांत, कभी कभी होती है वो ऐसी स्थिति, एकांत में बैठे हो, एक हिलोर उठती है अपने आप अंदर से, जैसे उसमें वो ऐसी लहर आती है, कोई भी दूसरा या दुश्मन, बेगाना, किसी के प्रति नजर नहीं आता, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता, चाहे शत्रु भी क्यों ना हो। लेकिन वो लहर होती है अक्षीणिक, कुछ थोड़ी बहुत देर तक रहेगी, तो उस समय वो एक न्यारा आनंद होता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। और उसके बाद जब वो लहर चली जाती है, वो न्यो का न्यो कैर टूट जाता है, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसा कैसे कर दिया है, वो घाटा पड़ गया, ऐसे है, वो भैंस बीमार है, फलाना है, बिजनेस ठीक को नहीं, चल जल्दी चलते हैं, वहां लेट हो जाएंगे, यानी शोक कहर की लहर टूट जाती है। अब उस सतलोक के अंदर कहता संखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। उस सुख सागर में चलो। तो यहां क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी, मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तन भरमत हो गे कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तन भरमत हो गे कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर भया बोरे कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्न अगर कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म राजा की न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षको कह तू दर दर घूमिया मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुके सागर जहां शब्द सिंधु रत्न अगर। मन तू चल रे सुके सागर जहां शब्द सिंधु रत्न अगर। फिर क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्न अगर। भाई असंग जन्म तन मृत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। असंग जन्म तन मृत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धर रे। मन तू चल रे सुके सागर जहां शब्द सिंधु रत्न अगर। मन तू चल रे सुके सागर जा शब्द सिंधु रत्न अगर। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुके सागर जहां शब्द सिंधु रत्न अगर। मन तू चल रे सुके सागर जहां शब्द सिंधु रत्न अगर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थान। मन तू चल रे सुके सागर जहां शब्द सिंधु रत्न अगर। मन तू चल रे सुके सागर जहां शब्द सिंधु रत्न अगर। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्न अगर। अब इसमें गरीब दास साहिब जी ने क्या बताने की चेष्टा की है कि अपने ही मन को कह रहे हमें समझाने के लिए भोली आत्माओं को। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रहे। अपनात्मा यहां एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल परमात्मा ने दया करी है। वैसे तो इन अन्य संतों पंथों धर्मों के महापुरुषों के जीवनी में हमें बहुत मटेरियल बहुत मसाला मिल जाता है परमात्मा को समझने का उसके विधान को जानने का। आपको थोड़ा सा दिखाते हैं आओ जैन धर्म को जाने एक पुस्तक जिसका इससे बहुत अच्छा लिंक है। ये देखिएगा आओ जैन धर्म को जाने एक पुस्तक है। ये जैनियों के द्वारा ही लिखी हुई है। इसका राइटर है प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने लेखक प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री जम्बूद्वीप हस्तनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन जम्बूद्वीप हस्तनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहां से मुद्रित है दिनेंद्र जैन न्यू रिसेप्ट ऑफसेट प्रिंटर्स ये मेरठ में छपी है। इसके हम 200 डेढ़ पृष्ठ पढ़ाएंगे, घना नहीं। आओ जैन धर्म को जाने, पृष्ठ 293 पर विशेष प्रकरण में प्रश्न नंबर है यो 3343। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य उत्तर दिया है कि अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब 293 पर आ जाते हैं। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? श्री महावीर जीवन के भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? प्रश्न है। उत्तर, पूर्वा नामक भील की पर्याय से। ये पहले पुरुरोवा नामक भील था यह आत्मा, फिर पूर्वा भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय से कहां गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देवता हुआ, देव हुआ। फिर कहां गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारिचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत ऋषभदेव का बेटा था और मारिचि भरत का पुत्र और ऋषभदेव जी का पोत्र था। बेटे का बेटा पोत्र ये मारिचि, ये आगे चलकर महावीर जैन होया। और इस मारिचि ने सबसे पहले ऋषभदेव जी से दीक्षा ली थी, यानी प्रथम तीर्थकर से उपदेश लेकर आगे इसने के लाभ प्राप्त हुआ, यानी क्या हुई, क्या लाभ हुआ। मारिचि के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, फिर सौधर स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर इस भरत क्षेत्र की सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण और गौतम स्त्री की अग्नि से नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। अब हम सारा घुमा कर यहां आ जाते हैं 295 पर। मंदिर नगर में सालका ब्राह्मण पत्नी की से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान प्रयास से महावीर भगवान का जीव कहां गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग महाइंद्र, वो महान इंद्र आपको देखा ऊपर ब्रह्मलोक में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहां गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया? अनेक भाव धारण किए वो इस प्रकार है, ओ, 1000 बार, यानी इतने जन्म हुए उसके इकट्ठे, 1000 बार वृक्ष के शरीर भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, नीम की जीवनी भोगी, और 90,000 बार केल वृक्ष के भाव, केले के, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्य के शरीर जीवन नोत्रा, और 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी के भाव यानी जीवन, और 60 करोड़ बार गधे के शरीर उत्तरा गजुआ, गधे के जीवन 60 करोड़ बार गधे का भाव जीवन, और 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओ हो हो 30 करोड़ उत्तरा गजुआ, गधे और कुत्ते का तो एक का जीवन बतेरा, ये सारे देवता अपने खत्म हो जाए इसके जीव के, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90,00,000 बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा और तरह की, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60,00,000 बार गर्भपात से मरने, ओहो, और 80,00,000 बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, 80,00,000 बार देवता बनया। 80,00,000 के देवता कसराड़े रख जाए, एक में गधा बन जाते, जरूरत कोई ना फिर कि मैं वर्णन की। आगे क्या बता है कि उसके बाद कहा गया राजगृह नगर में स्थावर ब्राह्मण हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में सात बार सागर के आयु वाला देव अनि चक्कर खत्म नहीं हुआ, फिर आगे फिर चल पड़ा, फिर कहा सातवें नरक में गया। ओहो या कसर रह रही थी, सातवें नरक में गया, फिर प्रथम नरक में गया। अब गणाना सातवें स्वर्ग में देव हुआ, यहां देखिए पुष्पोत्तर विमान में जम्बू द्वीप के छत्रपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव फिर कहां गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। अच्छा, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड मत चलाए। जय हो बंधी छोड़ की। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कोट जन्म तन भर मत हो गे कुछ ना हाथ लग्यारे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारी, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मुन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया ये मिला न निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या हो गे जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मध महल मठ बोरे बहुर न दे धर रे, दोजक बहिष्त, दोजक माने नरक, बहिष्त माने स्वर्ग। कहते हैं दोजक बहिष्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बगारे। ओए होए, अब इस महावीर जैन जी की जीवनी से आत्मा कांप जाती है। पुण्यात्माओं, जिनका युग काल की माया का भांग का नशा उतर गया, नशे वाला चाहे कितना लोटारा उसने तो मतलब है कोई नहीं डरन का, तो आप जी के ऊपर से काया काल की माया का यो भांग का नशा उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक सत्संग रूपी कैप्सूल दिए जा रहे हैं। क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों ना मर रे, सत्संग में आने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को सुनने के लिए आने के लिए एक फार्मूला याद रखे। असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, अब जीवित कैसे मरना है। जैसे एक व्यक्ति जाओ था कहीं, एक व्यक्ति की दो कन्याओं का विवाह था, तीन दिन शेष रह रहे थे, सामान लेने के लिए दौड़ धूप कर रहा था, कभी बाजार में कभी रिश्तेदारों को निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे, और तीन दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मृत्यु होगी। एक भक्त बताओ था कि मेरी मम्मी की तीन बेटियां का ब्याह था, बात नोट कर आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी, और जिसकी तीन बेटियां का ब्याह लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, और उसने कितनी चिंता होती है पता नहीं, कि के विचारों में डूबी हुई थी, और वहां खड़ी होगी पिलर बस स्टैंड का ऊपर थाम से होते हैं उन पिलर के सारे लाएगी सोचने इधर उधर की, उधर से ड्राइवर ने बस लगानी चाहिए बैग करके, कंडक्टर की ओर पैसे पासे खुले देने लग गया, वो टेढ़ी होगी वह बस, और वह उस पिलर बीच खंबे बीच और बस के बीच में वह माई उसकी मम्मी आ गई, और आध घंटा तड़प के ठाठू उठा कर लेकर चलन लगी तो मर ली उड़े। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, जैसे वो कितने इम्पोर्टेंट कंपल्सरी कितने जरूरी कार्य थे उनके आवश्यक कार्य थे और वह रह गए न्यो के आप चला गया। तो कहते यहाँ आने में मन बकवाद करे या लालटेन दिखा दे इस तरह या रोशनी दिखा दे भगवान के ज्ञान की, कहते जीवित क्यों ना मरे रे नो सोच ले हम मर गए और सत्संग में चलेंगे। और पुण्यात्मा यहां तक दो या तीन चार दिन मरोगे फिर जाकर संभाल लोगे कामना जो परमानेंट टिकट कटकी जब गे कर लेंगे, परमानेंट मौत होगी फिर भी तो काम उड़े पड़ा रह जाएगा कौन करेगा तुम्हारा। तो ये तीन दिन में जो थोड़ा बहुत वैसे तो होया नहीं करता, संता के काम बिगड़िया नहीं करते बने पाया करें या सत्कर्म मान लेना जब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा। और मान ले यो मन घना दुखी करे तो न्यू समझा दे इसने जाई मर गए तर फिर आज मृत्यु होगी फिर कौन करेगा इसने। तो ये दो दिन मर जाएंगे ना सोच ले फिर आकर काम न संभाल तो लेंगे अपने को और भगवान भी मिलेगा। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मर रे द्वादश मधुमहल मठ बोरे बहुर न दे थरे। अभी तक दसवां द्वार का गाटा जोड़ रखा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, काल तक ही एक ब्रह्मांड तक रखने का ही ज्ञान था दसवां द्वार। वो बारहवें द्वार के पार करके सचखंड है सतलोक है। द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते वो बारहवां द्वार है। फिर कहते हैं सतगुरु मिले तो दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया और तीन लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब आपको महावीर जैन जी की जीवनी दिखा दी, कलेजा हिल जाए इंसान का। और कहते हैं यो रोग कट्टेगा इब तुम्हारा, जो मंत्र हम दे रहे हैं जो भी दिता एक सब्जा के लिए समाप्त हो जाएगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आना होगा। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समान चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर अस्थाना। वहां क्या राहत है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरु देव। पुण्यात्माओं ये जो चार दिवसीय सत्संग चल रहा था जिसमें परमात्मा की अमरवाणी का पाठ हुआ, अब वो पाठ संपूर्ण हुआ, आज इसका अंतिम दिन है। ये शुभ समागम हमें ये याद दिलाने के लिए किया गया था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे और इस समागम का एक विशेष और महत्व है कि फाल्गुन सुदी द्वादशी को फाल्गुन उतरते की द्वास को दिन के 10-11 बजे के आसपास वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अमर पुरुष सतलोक से चलकर अपने निज धाम से गति करके और एक जिंदा महात्मा बाबा जी का रूप बना के गांव छुड़ानी जिला जज्जर प्रांत हरियाणा भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर वो परमात्मा अवतरित हुए, जिसमें गरीबदास महाराज जी जो छुड़ानी के निवासी थे 10 वर्ष की आयु के थे तब उनको वो परमात्मा वहां खेतों में जंगल में जब गरीबदास जी जहां गौवें चरा रहे थे वहां मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को परमेश्वर कबीर देव जी सतलोक में लेकर गए थे, उनको सब सतलोक का सब व्यवस्था दिखाई ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर क्या व्यवस्था है वो दिखाई, और जहां जहां भी परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए वहां वहां कबीर साहब के साथ कैसा व्यवहार किस किस ने किया वो सब आंखों देखा गरीबदास जी ने। पीछे से गरीबदास जी के शरीर को मृत जानकर, क्योंकि परमात्मा आत्मा को निकाल ले गए थे, शरीर मृत तुल्य हो गया था, गरीबदास जी महाराज जी 10 वर्ष के बालक के शरीर को मृत जानकर कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। फिर परमेश्वर ने वो आत्मा वापस शरीर में भेज दी, प्रवेश कर दी। गरीबदास जी जीवित हो गए। उसके बाद ये आंखों देखी जो भी सारी व्यवस्था थी, परमात्मा को साक्षात देखकर सतलोक के दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीति से परिचित होकर के गरीबदास साहेब जी ने कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने मुखारविंद से उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं, यहां के प्रभु, यहां के स्वामी काल ज्योति निरंजन ब्रह्म के द्वारा हम सभी आत्माओं को मिसगाइड करके रखा हुआ है। उस अज्ञान को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। काल भगवान पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवाता है और लोक वेद प्रत्येक प्राणी के अंदर भर देता है। परमेश्वर कबीर जी आते हैं और बताते हैं कि मेरे साथ दो भाई, मन सब जग भूल्या पाया, मेरे को यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहने वाला हो कि परमात्मा कौन है, कैसा है, यथार्थ रूप से बताने वाला नहीं मिला। सभी कहते हैं परमात्मा निराकार है, सभी कहते हैं ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा, इस काल को पूर्ण परमात्मा कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं मैंने सब जग भूल्या पाया। तो पुण्यात्मा, गरीबदास साहेब जी को सतलोक लेकर गए, वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी ने वो आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में लिखा, जो आज हम दासों के लिए वो एक वरदान बन गया। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है जन्म और मरण के दीर्घ रोग का नाश करवाना, लेकिन हमने मनुष्य का मूल उद्देश्य मान रखा था संतान हो जा, संपत्ति हो, कार और कोठी हो जा, बच्चों का फिर संतान हो जा, हम बेसिक मर जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं, हमारा फर्ज पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो गया, हम यहां तक सीमित थे। परमात्मा कहते हैं कि जो काम मनुष्य जीवन से करना था वो तो तूने प्रारंभ भी नहीं कराया। संतानों उत्पत्ति करना, इनकी परवरिश करना, ये तो एक हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसको तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। फिर मनुष्य जीवन को मनुष्य शरीर देने का औचित्य क्या था प्रभु का, क्या उद्देश्य था, इसमें हमें कितनी बुद्धि दी है, हम मकान बना सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, गर्मी सर्दी से वर्षा से तूफान से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, हट बना सकते हैं, मकान बना लेते हैं। ये मकान हट पहले झोंपड़ी डाला करते थे, सभी कच्चे मकान होया करते थे और वो भी टाइम पास करके। आज कोई चार चार मंजिल की कोठी बना रहा है, बीस दो दो चार चार दस दस करोड़ की, वो भी उस कोठी के एक कमरे में एक चारपाई पर विराजमान रहता है, बाकी वो व्यर्थ पड़ी रहती है। और जो एक झोंपड़ी में रह रहा है वो भी अपना टाइम पास कर रहा है। यदि भक्ति को दोनों ही नहीं कर रहे हैं तो दोनों ही व्यर्थ हैं, और यदि भक्ति वो गरीब निर्धन झोंपड़ी वाला सत भक्ति कर रहा है और वो कोठी वाला भक्ति नहीं कर रहा है तो वह कोठी वाले का जीवन व्यर्थ हो रहा है। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है पर आत्म कल्याण करवाना है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है मिला न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो बोर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ये बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन मानव शरीर ऐसे है जैसे एक कूप होता है, यदि कुएं में जल नहीं है तो उसका नाम भले ही कूप है कुआ है लेकिन गुण कुएं के कोना, और जल है तो खारा है तो वो भी यूजलेस है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर पाकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं, सत भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो जल रहित कूप है। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका नाम मनुष्य अवश्य है, शरीर मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। पुण्यात्मा आत्म कल्याण करवाने के लिए हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि पूर्ण गुरु की तलाश करें। ये नियम है कि पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए सभी सदग्रंथों ने, सभी संतों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी यही व्याख्या दी है कि पूरे गुरु की सेवा ठाने, पूरे गुरु बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं इस पृथ्वी पर पूरा गुरु कोई नहीं, पूरे गुरु परमात्मा ही होते हैं, उनको सतगुरु भी कहते हैं। सतगुरु दूसरे शब्दों में परमेश्वर ही होता है। बाकी हम आदि हो गए हैं नकलियों को असली उपमा देने के, हैबिचुअल हो चुके हैं, इसलिए नकली गुरुओं को भी हम सतगुरु बोल देते हैं, वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं ही थे, जगत गुरु वही थे, हैं और रहेंगे। तो वो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। वेद भी प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ में भाग में बैठा है, विराजमान है, वहां से गति करके नीचे आता है, अपनी उन अच्छी आत्माओं को, वर्णीय आत्माओं को, पुरुषों को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। फिर उनको ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण करता है। परमात्मा का उद्देश्य यहां आने का यही होता है कि वो अपने यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को बताए, क्योंकि काल ने आप जी को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। हमारी बुद्धि एक जीव रूप में बनाकर छोड़ दी है। हमारे लिए संतान संपत्ति, पुत्र बेटा और बेटी, कार और कोठी, बस इतनी ही चाह हमारे अंदर बनी रहती है। परमेश्वर ने आके हमें याद दिला है कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, ये ठिकाना आपका नहीं है। तुम अपने यथार्थ स्थान को भूल के यहां इस काल के कष्ट में लोक में रह रहे हो। ये महा दुखदायी स्थल है, यहां का भगवान भी महा कसाई है, इसको रहम नाम की चीज नहीं। आप देखते हो किसी की दोनों टांग कट गई, कोई अंधा हो गया, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर सुनामी आकर के कहर मचा दिया, क्योंकि रहम अपनों को होता है, अपने को अपनों को होता है। ये हमारा नहीं है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसको 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण इसने हम सबको यहां गुमराह करके रखा हुआ है। और अपने खाने की व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सती थी, और तमगुण शिव जी से संहार कराता है। 100,000 जीवों को ये स्वयं आहार करता है। ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये विवश है, किसी के बस की बात नहीं है। और भगवान सतोगुण विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में आस्था, मोह इतना प्रबल होता है कि जीव के बस की बात नहीं इस मोह को हटा सके, ममता को दूर कर सके। इसको सतीथि कहते हैं। सतीथि मीन यहां टिके रहे, कोई और बात सोचा ही नहीं, अपना बेटा बेटी कार कोठी इन संपत्ति संतान में मोह में जकड़े रहे। और संहार का अर्थ आप खूब समझते हो, तीसरा पुत्र काल का ये शंकर, तमोगुण शंकर, ये संहार करके अपने पिता के पास 100,000 प्राणियों को डेली भेज देता है। अब पुण्यात्माओं जरा सा भी विवेक करके देखें, अरबपति खरबपति अपने ही हेलीकॉप्टरों में दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गए, वह संपत्ति यही रहेगी दरिद्र आई। इस कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ वांग पड़ी। काल ने इस माया की चाह की भांग पूरे ब्रह्मांड में डाल दी, जैसे कुएं के अंदर कोई अच्छी भांग घोट कर डाल दे, और उस कुएं के पानी को जो भी पीवेगा उसका ये 10 मिनट के बाद सिर चकराने लग जाएगा, लड़खड़ा के चलेगा, अकला के बोलेगा। तो उस कुएं के पानी को चाहे 100 पी लो, चाहे 1,000 आदमी पी लियो, सभी की एक जैसी स्थिति होगी, वैसी बोली होगी, वैसी चाल होगी। तो इस काल के जाल में, अज्ञान के आधार पर, माया की चाह में ये प्रत्येक प्राणी अंधा हो रहा है। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों ने खो। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। एक भक्त को हमारे भक्त प्रार्थना कर रहे थे कि आप सत्संग सुनो, पंजाब की बात है, वैसे तो ऐसी घटनाएं बहुत सी घटती हैं, पर एकाधी घटना ऐसी होती है जो हृदय में ऐसी जम जाती है, ऐसी चोट लग जाती है कि उसको याद कर करके हम सुचारू रहते हैं, लाइन तो उतरते नहीं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, वहाँ एक आश्रम था है उनका, वहाँ विराजमान थे। फिर वो सतलोक चले गए, उसके बाद इस दास को उपदेश देने का सत्संग करने का आदेश वो 2-2.5 वर्ष पहले ही दे गए थे। तो एक दास वहां सत्संग करने जाता था, तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला में पंजाब में, दूसरे रविवार को। वहां कोई बूढ़ा कोई बुजुर्ग की मृत्यु होगी, जो बुढ़िया मर गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए उनका रिश्तेदार आया हुआ था सह परिवार। तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनना, वो शुक्रवार को आया था, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहा था और संडे को उसने चंडीगढ़ पहुंचना था। तो शनिवार को जब चलने लगा उनसे कहा कि आप रुको, दो बजे ही चला था उस शनिवार को। उन्होंने कहा कि अभी तो रुक जा और कल सत्संग सुनना। उन्होंने बोला ना मुझे बहुत जल्दी है, बहुत जरूरी कार्य है और मेरा एक ना पार्टी से एग्रीमेंट होना है, उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। अब सन 1998 में 5 लाख का बेनिफिट हुआ था, बहुत कुछ कहा नहीं माना, यहां तक कहा कि तू कल 9 से 11 सत्संग होता है संडे को, गर्मिया के दिन है, यहां से 11 बजे खाना खुना खा कर 11:30 चल जाएगा, जब भी तू पहुंच जाओगे आप 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक पहुंच जाएगा। बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत कुछ व्यवस्था करनी है, उनके पार्टी आओगी उसके लिए कोई होटल बुक कराना है, ऐसे ऐसे ना माना। ना माने तो जा भाई अंबाले के पास, अंबाला शहर के पास आकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके किसी कोई डिफेक्ट आ गया था, उसके पिछले 2-4 पहिए निकाल रखे थे, आगे के 2 पहिए व्हील शेष थे और पीछे जैक ला रखा था उसके। मारुति कार में वो पूरा परिवार 4 सदस्य थे, एक बेटा एक बेटी वो दोनों, इतनी स्पीड तो चल रहा था कि उसने तो 5 लाख दिखे थे और कुछ ना दिखा था उसने, उस ट्रक का मां ठोक दी। वो तो मरते उस जब वे लिए होंगे जब वो टकरा ली, रही खी कसर वो बजरी का ट्रक न्यो का न्यो पूरा ऊपर पड़ गया उसका, चारों खत्म हो गए। चाट ले उन 5 लाख रुपया ने सिर पदर ले, पुणात्माओं या चौंद मरा सब का लागरी है, किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लागे और ये मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अब इस भूल को सतगुरु मिटा सकता है, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अपुणात्मा ये बातें हैं जो हमारे हृदय में स्थान बनाते हैं, ये परमात्मा के वचन हैं और ये सत्य हैं। तो सत्संग के अंदर आने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सा कर्म हमने करना चाहिए, कौन सा ना करना चाहिए। और पुण्यात्माओं, परमात्मा की शरण में आने से कहते हैं आई टले बला और जय मस्तिक में सूली हो काटे में टल जा। परमेश्वर की भक्ति सत भक्ति करने से, कबीर परमेश्वर की शरण में आने से, यदि आपकी मृत्यु भी होनी हो उसको भी परमात्मा एक्सटेंड कर देता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीरे हैं ये कुल के सतगुरु एक। अब सतगुरु कुल के यानी सबके सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले ओनली कबीर साहेब हैं। और जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मौत, जम काल, काल और ये मौत उस कबीर परमेश्वर से डरती है। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डर शीशे। परमात्मा की महिमा गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर परमेश्वर ही एक वो परम शक्ति हैं, वो परम परमेश्वर हैं जो आप जी के प्रारब्ध के कर्म को नाश कर सकता है, कर सकते हैं। और इसी परमात्मा से ये काल भी डरता है और मौत भी निकट नहीं आती है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये तन जाएगा सके तो ठहर ला, कैसे वा कर साधु संत की और एक गोविंद के गुण गा। क्या बताते हैं, ये एक दिन तेरा जीवन समाप्त होगा, बट नेचुरल है। और ये उस दिन होगा जिस दिन तेरा निर्धारित समय तेरे संस्कार वश यहां के विधाता ने, काल ने लिख दिया। और इसको ना ब्रह्मा मिटा सकता, ना विष्णु कम बत्ती कर सकता, इसको कौन कर सकता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। कबीर परमेश्वर ही आप जी के इस प्रारब्ध के कर्म को, पाप दंड को समाप्त कर सकता है। जब गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर जा रहे थे, रास्ते में यहां के एक और सुप्रीम पावर है जिसको धर्मराज बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ वन गवर्नमेंट। जब चीफ जस्टिस यानी धर्मराज के दरबार में, मुख्य न्यायाधीश के दरबार में कबीर परमेश्वर और गरीबदास जी दोनों पहुंच गए, तो उसी समय धर्मराज यानी चीफ जस्टिस खड़ा हो गया कुर्सी त्याग के। और कबीर परमात्मा उसको दमकाते हुए बोलते हैं, जैसे एक बड़े अधिकारी आता है कहीं और छोटे अधिकारी को, जैसे एक एसपी आ जाता है एसएचओ के, एसएचओ यानी थाने में, और वहां का एसएचओ खड़ा होता है, सलूट लगाता है, ये बट नेचुरल होता है, एक शिष्टाचार है, स्वाभाविक है, और वो उस पर डांट लगा रहा होता है कि ऐसा करना, अगर ऐसा नहीं किया तो देख ले मेरे से बुरा नहीं होगा, और वो कहता है जी सर जी सर। तो इसी ऐसी स्थिति में कबीर परमेश्वर के सामने यहां का मुख्य न्यायाधीश यानी धर्मराज खड़ा होकर के ऐसे सलूट लगा रहा है, उस वो धर्मराज ना ब्रह्मा विष्णु महेश को सीट छोड़ता है, ना किसी अन्य ऋषि और महर्षि के साम के लिए सीट छोड़ता है, केवल कबीर परमात्मा के लिए वो सीट छोड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ना प्रधानमंत्री के लिए सीट छोड़ेगा, हाँ राष्ट्रपति यदि वहां जाता है तो वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सुप्रीम जज है, जज भी है। तो ऐसे कबीर परमेश्वर वो फुल पावर है, वो कंप्लीट गॉड है। तो कैसी वार्ता होती है, गरीबदास जी आंखों देखा क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। अब कितना प्यारा, कितनी प्यारी व्याख्या कर रहे हैं परमात्मा की गरीबदास जी, आंखों देखा, आंखों देखी कैसी प्यारी व्याख्या कर रहे हैं। पंजा दस्त कबीर का, दस्त माने हाथ है, कहते हैं परमात्मा कबीर जी का आशीर्वाद भरा हाथ अपने सिर पर रखना, अपने सिर पर रखवाओ, रखवाना कैसे कि उनकी मर्यादा में रहते हुए सत भक्ति करते रहना, आपके सिर पर परमात्मा का पंजा बना रहेगा, और उसके बने रहने से क्या होगा, जम किंकर चंप नहीं भाई उधर जात है वंश। कबीर परमात्मा कहते भक्ति बीज होए जो वंशा, अरतारों तास के 71 वंशा, ओए होए जो हमारी सत्साधना पर दृढ़ होकर लग जाएगा उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा। अपुनात्माओं अब ये भक्ति स्टार्ट हुई है और इसमें 101 पीढ़ी तक, अब कितना समय बीत जाएगा, लगभग हजारों वर्ष बीत जाएंगे। तो आज आप जी ने यो बीज बो दिया भगवान की सत भक्ति का, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, सब ग्रंथों को समझता है, इस ज्ञान को दृढ़ होकर ग्रहण करेगा, फिर विचलित नहीं हो सकता। चाहे यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपको, आपसे चर्चा करें ज्ञान की, आप उनको पराजित कर दोगे, आप भ्रमित नहीं हो सकते। तो ऐसे दृढ़ भक्तों के 101 वंश पार होंगे,